Aum Vishnupadaya. Krishna Prishthaya Bhutale. Shrimate Bhakti Vedanta. Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschata Desha Tarine, Gurave Gaura Chandraya, Krishna Bhaktaya, Tad Bhaktaya Namo Namaha, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya,
स्वागत है। आज रविवार के भागवत में हम आठवें स्कंद श्रीमद् भागवत के सत्रहवें अध्याय के सत्रहवें श्लोक से लेकर तेईस श्लोक तक पढ़ेंगे। माता आदित्य को पयोवर्त के प्रताप से भगवान विष्णु का दर्शन हुआ है, जो अपने इंद्र आदि पुत्रों का हित चाहती है, उनको वापस ऐश्वर्य और उनके स्वर्ग धाम को पुनः प्राप्त करेगी, उनके मन की कामना है। तो भगवान माँ आदित्य को कल कह रहे थे कि इस वक्त ब्राह्मणों और वैष्णवों से रक्षित जो असुर ऋषभ युद्धपति है, उनको बल से हराने से सुख नहीं मिलेगा। तो आज आगे क्या कहते हैं, यहां से हम श्रवण शुरू करते हैं। तो ये तो ऐसा उत्तर है कि मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। तो आदित्य माता भगवान की ओर देख रही है, तो भगवान आगे बोल रहे हैं, अथापि अद्य मम देवी चिंतया, अथापि फिर भी, बल से तो नहीं कर सकता, अथापि का मतलब कोई और एक रास्ता निकालता हूं, क्या करता हूं, उपाय, एक उपाय निकालता हूं, कोई दूसरा कोई उपाय निकालता हूं। क्यों निकालते हैं भाई उपाय, दूसरा क्यों निकालते हैं? जब नेम से नहीं कर सकते हो तो दूसरा उपाय क्यों ढूंढ रहे हैं? बोला देवी चिंतन संतुष्टया वर्त चर्यण्या, मैं आपके पयोवर्त से संतुष्ट हुआ हूं क्योंकि आपने अच्छी तरह से मेरा चिंतन किया है, पयोवर्त का जो पालन किया है उससे मैं संतुष्ट हुआ हूं, इसलिए मैं उपाय ढूंढ रहा हूं कि मैं आपके पूजा से पयोवर्त से संतुष्ट हुआ हूं। ममार्चनम, मेरी जो आपने पूजा की और जो भी कोई मेरी पूजा करता है भविष्य में भी, न हरती गंतुम अन्यथा, एक बार भी कोई मेरी पूजा करता है तो बेकार नहीं जाती है, अन्यथा मतलब बेकार नहीं जाती, कुछ तो मिलता ही है। ऐसा भगवान ने कहां कहा है भगवद गीता में छठे अध्याय में, नेहा भी कर्म ना सोचना, छठे स्थान क्या योग कल्याण कृत दुर्गा तात किम गच्छति, ये श्लोक छठे अध्याय का, जो योग पूरा नहीं कर सके फिर भी जो कल्याण का कार्य करता है उसका अनिष्ट कभी नहीं हो सकता, उसका तो भला ही होगा, ये छठे अध्याय में ऐसा एग्जैक्टली कि जो मेरी पूजा करता है चाहे पूरी ना भी करे यहां तो मैं संतुष्ट हूं, और संतुष्ट नहीं भी होता हूं तो भी अहित तो होता ही नहीं, उसका भला तो होना ही है। श्रद्धानुरूपम फल हेतु कृतावात, क्योंकि मैं संतुष्ट हुआ हूं और जो भी मेरी पूजा करता है उसकी श्रद्धा के अनुरूप मैं फल देता ही हूं, उसको वो फल मिलता ही है, श्रद्धा के अनुरूप फल मिलता है। बड़ा आश्चर्य का शब्द है, पूजा पूजा से संतुष्ट होता हूं और श्रद्धा के अनुरूप फल देता हूं, पूजा के अनुरूप नहीं श्रद्धा के अनुरूप, आपकी श्रद्धा कैसी है उसके अनुरूप फल देता हूं। अच्छा ये श्रद्धा कई बार से लानी पड़ती है, सब में होती है, भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्रद्धा मयो अयम पुरुष, ये आदमी बना हुआ है श्रद्धा का है, बगैर श्रद्धा के तो जिंदगी में कोई ही चल ही नहीं सकता, सारा काम हमारा दुनिया का श्रद्धा और विश्वास पे चल रहा है, बस सबके ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है शास्त्र के ऊपर, साधु के ऊपर, भगवान के वचनों के ऊपर नहीं, बाकी सबके ऊपर है, बाकी सबके ऊपर है, दुकानदार के ऊपर है कि जो माल दे रहा है सही है, दूध वाले के ऊपर है कि सही है दूध दे रहा है, वो नहीं दे रहा है फिर भी सही है, उसके ऊपर भी श्रद्धा है, गाड़ी मोटर वाले के ऊपर श्रद्धा है, ट्रेन वाले के ऊपर श्रद्धा है कि मेरे को पहुंचा देगा, लेकिन भगवान कह रहा है मैं आपको मेरे धाम ले जाऊंगा, पता नहीं ले जाएगा नहीं ले जाएगा, सबके ऊपर श्रद्धा है बस भगवान के ऊपर नहीं। ये है सच में, यही एक समस्या है हमारी, तो श्रद्धा के अनुरूप फल देता हूं। अब इस श्लोक का अनुवाद श्री प्रभुपाद जी का सुन लीजिए, यह 17वां श्लोक, 16-17। हे देवी आदिति, फिर भी क्योंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूं, अतएव मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई ना कोई साधन खोजना पड़ेगा, खोजना होगा, क्योंकि मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, प्रत्युत पात्रतावे के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है, मेरी पूजा श्रद्धा के अनुसार वांछित फल देती है तो मैं कोई रास्ता निकालता हूं। अब आगे कहते हैं क्या रास्ता निकालेंगे सुने, त्वयार्चितश्चाहं अपत्यगुप्तये पयोवर्ते वरतेनानुगुणं समीरितः स्वां सेन पुत्रत्वं उपेत्यते सुतान् गोपतास्मि मारिच्य तपस्य अधिष्ठितः। अब कह रहे हैं तस्य अर्चितश्चाहम् अपत्य गुप्तया, क्योंकि मैं आपके द्वारा पूजा गया हूं, तस्य अर्चित आपने मेरी अर्चना की है, अपत्य गुप्तया क्यों आपने पूजा की है, आपके पुत्रों की रक्षा के लिए। गुप्तया का कल आपको अर्थ सुनाया था ना, कोई भी गुप्ता जी समझो बोलो कुछ पैसा दे हमारी रक्षा करनी है, गुप्ता का मतलब ही रक्षा करने वाला है। गुप्ता जी कोई है क्या, वही रक्षा करो हमारी। गुप्ता का मतलब रक्षा, गुप्तया अपत्य गुप्तया अपने पुत्रों के रक्षा के लिए आपने जो मेरी अर्चना की है पयोवर्तेन पयोवर्त के द्वारा अच्छी तरह से आपने मेरी पूजा की है, तो मैं क्या करूंगा, पूजा मेरी कीजिए ना, तो मैं ही स्व अंश से ना पुत्र त्वम अपने अंश से तेरा पुत्र बनूंगा, मैं स्व अंश से ना मेरे अपने अंश से मैं पुत्र त्वम आपका पुत्र बनूंगा। उपेतते सुतम आपके घर में अगर मैं आपका पुत्र बनूंगा तो आपके पुत्रों की, मैं उनका छोटा भाई हो जाऊंगा, आपके पुत्रों की गोप्तास्मि मैं रक्षा करूंगा। फिर गुप्ता आ गया, उनकी मैं रक्षा करूंगा क्योंकि फिर तो मैं अपने भाइयों का सहायता करूंगा ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। और फिर कहते हैं क्या करो, मारीचा तपस्या अधिष्ठितः। कश्यप किसका बेटा है, मरीच का ऋषि, मरीचि ऋषि का, तो यही नाम है कश्यप का, मारीचि मरीचि का। और मरीचिका में क्या करो, तपस्या। एक बड़ी बात कह रहे हैं कि केवल आपकी पूजा से संतुष्ट नहीं हुआ हूं, तो जो कश्यप जी ने तपस्या की उससे भी मैं बहुत बड़ा प्रसन्न हूं। इसका मतलब केवल पत्नी पूजा के उससे काम नहीं पड़ेगा, पति ने भी कुछ साधन किया होना चाहिए। कि मरीचि की तपस्या से अधिष्ठित उसने जो तपस्या की है उससे भी उसके कारण मैं आपके, तो आपके पुत्र बनने के दो कारण बताए, आपका प्रयोवर्त और आपके पति की तपस्या, इसलिए मैं आपके घर में पुत्र के रूप में अपने अंश से आऊंगा और फिर मैं अपने भाइयों की रक्षा कर सकता हूं। अब क्या करना है इसके बाद बताते हैं। ये श्लोक हो गया 18 श्लोक का भाई पढ़ दी तात्पर्य। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति की है और महान प्रयोवर्त रखकर मेरी समुचित पूजा की है, मैं कश्यप मूर्ति की तपस्या, कश्यप मुनि की तपस्या के कारण, अब देखो आपने पूजा की है और कश्यप ऋषि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। अब दो बातें कही, कश्यप की तपस्या और आपके पर्यवर्त से मैं प्रसन्न हुआ हूं इसलिए आपकी इच्छा पूरी करूंगा और आपका पुत्र बनूंगा अपने हाथ से, तो फिर आपके पुत्रों की रक्षा कर पाऊंगा। ठीक है भगवान, अब आगे क्या कह रहे हैं। उपधाव पतिम भद्रे प्रजापतिम अलक्ष अकल्मषम माम च भाव्यति पत्याव एवं रूपम अवस्थितम। उपधाव जैसे उपासना बोलते हैं, उप का मतलब है नजदीक और आसन का मतलब आसन लगा के बैठो, मतलब पूजा करो पास में जाके पूजा करते नहीं, घर बैठे बैठे बोलो मैंने भगवान आपको प्रणाम कर लिया, नजदीक आके प्रणाम करो। उपासना का मतलब नजदीक आना, उपासना पास में आपके बैठना पूजा के लिए। तो आप क्या करो, उपासना करो, पूजा करो, किसकी करो पूजा, पतिम अपने पति की, भद्रे ए ये आदित्य को कहा है, भद्रे मतलब आप सौभाग्यवती हो, आपका मंगल हो, आप अपने पति की पूजा करो। कैसी पूजा करें, प्रजापतिम, कैसा है आपका पति? प्रजापतिम, उसको प्रजा की उत्पत्ति करनी है, कश्यप प्रजापति है। कहते किसी के भी गोत्र का पता नहीं लगे तो कहो कश्यप गोत्र उत्पन्न हो। अरे किसी वैसे सांप से पूछोगे तुम्हारा गोत्र कहेगा कश्यप गोत्र उत्पन्न हो, बिल्ली से बोलो बोलेगा कश्यप गोत्र उत्पन्न, क्यों सारे ही कश्यप से उत्पन्न होते हैं। तो किसी के गोत्र का पता नहीं होता ना, पंडित जी तो बोलते कश्यप गोत्र उत्पन्न हो, नहीं तो हरेक को अपने गोत्र का पता है। आप कितने को अपने गोत्र का पता है? तो जितना है उनका भला है, नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या है। पहले तो लोगों को यह भी पता नहीं गोत्र होता क्या है। हम जिन ऋषियों की संतान है उन ऋषियों से हमारा, उन ऋषियों के नाम से हमारा गोत्र है। कोई अत्रि गोत्र का है, कोई गौतम गोत्र का है, कोई विश्वामित्र गोत्र का है, तो ये सब गोत्र ऐसे ऋषियों से आते हैं। तो कश्यप भी एक प्रजापति है, ऋषि है, तो उसके भी उसके नाम के गोत्र भी है। तो आपका जो पति प्रजापति है वो अकलमषम है। अकलमषम का मतलब अकलमषम का मतलब पाप, वो अकलमषम का मतलब पाप रहित, बहुत पवित्र शुद्ध, तपो तप से पवित्र हो गया है आपका पति, तप से पवित्र है। उसके अंदर उसका आप पूजा करो, उसमें क्या देख के पूजा करो? माम च भाव्यंति पत्या एवं रूप अवस्थितम, ऐसे देखो कि आपके पति के शरीर में मैं बैठा हूं। आप पति की पूजा करो, मेरे को मेरा ध्यान करो उसके शरीर में। आप अपने पति में जो तपोपूत है, तप से पवित्र हो गया है, जिसके अंदर अब कोई कलमश नहीं रह गया, उसमें आप मेरा ध्यान करो, मैं आपके पति के शरीर में प्रवेश करता हूं। 19वां श्लोक, तुम अपने पति कश्यप के शरीर के भीतर सदैव मुझे स्थित मानकर उनकी पूजा करो, क्योंकि वे अपनी तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। ठीक है, मेरे को उसके शरीर में देखो, मैं वहां बैठा। अब आ गया श्लोक 20वां, नये तत् प्रश्नाख्ययम् पृष्ट्यापि कथंचन सर्वं संपद्यते देवी देवगुह्यं सुसंवृतम्। इस श्लोक का एक अर्थ है नैव तत् प्रश्नाख्ययम्, कोई तुमसे पूछे भी तो बताना मत। कोई भी तुमसे पूछे कि तुम अपने पति की क्यों पूजा करें, बताना मत। पहली बात बताना मत किसी को, नहीं तो बताना, बस कोई प्रश्न पूछे तो नहीं बताना, आख्यातम बताना मत। पृष्ट्यापि कथाचन सर्वं संपद्यते देवी देव गुह्यं संस्मृतम्, कोई बहुत गुप्त बात है, एक बार अगर बाहर बता दी जाए तो उसका फिर कोई सफलता नहीं मिलती। तो गुप्त बातों का फल पाने के लिए उसको गोपनीय रखना चाहिए। मंत्र जो गुरु जी देते कान में, किसी को बताना नहीं होता है। तो जिस चीज से भगवत प्राप्ति करनी होती है वो चीज बाजार में जाके मार्केट में ढंडोरा नहीं पीटना होता है। जैसे मूर्ख कहते हैं आओ गुरु जी हमारे को भगवान आपको दिखा देगा, ये ढंडोरा पीटने की चीज नहीं है। जो ये गुप्त चीजें हैं ये रहस्य किसी को बताना नहीं है, पूछने के ऊपर ही मैं बताना मत। ये भगवान कह रहे हैं, भाई हम नहीं कह रहे, ये भगवान कह रहे हैं, किसी को मत बताना। जो मैंने आपको कहा है कि मैं कश्यप के अंदर प्रवेश करता हूं अपने अंश से, ये किसी को बताना मत। और केवल पता किसको लगता है? सिर्फ ब्रह्मा जी को पता लगता है। थोड़ी देर के बाद देखिए ब्रह्मा जी आ जाएंगे नीचे, कहेंगे भगवान आपके शरीर में कश्यप जी प्रवेश किया है, किसी को बताना मत। बहुत रहस्य की बात है, किसी को बताना मत। पढ़े इसका अर्थ पढ़ लें, कौन सा 20, हे नारी, पहले देवी बोला यहां नारी लिखा है, कहां से लाया नारी भाई पता तो करो। क्योंकि नारियों में बड़ा डर होता है, बात खोल देती हैं। हमने बताया था आपको युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया है कुंती को कि आप कोई चीज गुप्त नहीं रख सकती, तो भगवान बड़े सावधान हो गए कि कहीं ओ लेडी, अंग्रेज ने प्रभुपाद ने लिखा ओ लेडी तो इसने लिखा ओ नारी। देवी भी लिख सकता था, अंग्रेजी में तो लेडा लेडी के अलावा और कुछ है ही नहीं। भाई हमारे पास चाचा मासी नाना नानी मामा मामी बहुत कुछ है, अंग्रेजी में तो अंकल और आंटी की आबादी है बस, और तो कुछ है ही नहीं उधर। तो हे नारी, यदि कोई पूछे भी तो तुम्हें ये बात किसी को प्रकट नहीं करनी चाहिए, करनी है। यदि परम गोपनीय बात को गुप्त रखा जाता है तो वो सफल होती है, गुप्त रखा जाता है तो सफल होती है। तो मंत्र गुप्त रखते हैं तो सफल होता है। तो ये चीजें गुप्त रखने की है। भगवान के साथ आपका कोई साक्षात्कार हो जाए तो बाजार में जाके ढंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि हमारे से भगवान ने ऐसे कर दिया, ये बात अपना फिर सब सफलता समाप्त हो जाएगी। अब 21वें श्लोक में पहुंच गए। श्री शुक उवाच, भगवान इतना बोला, भगवान का आदेश हो गया, और फिर क्या हुआ अब कौन बताए। तब सुखदेव कह रहे हैं भगवान वहां से चले गए। अब क्या सुखदेव कह रहे हैं सुनिए। श्री शुक उवाच, एतावद् उक्त्वा भगवान स तत्रैव अन्तरधीयत। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब आदित्य दुर्लभम लब्ध्वा हरेर जन्मात्मनि प्रभो, और आदित्य को दुर्लभम लाभम, ऐसा दुर्लभ लाभ हुआ। क्या दुर्लभ लाभ हुआ? हरेर जन्मनि प्रभो, अब हरि की जननी बनने जा रही। अब आदित्य जो कैसा दुर्लभ लाभ हुआ कि हरि की जननी बनने जा रही। हरि की जननी मतलब हरि इनका पुत्र होगा। उपधावती पतिम भक्त्या, उसने अपनी पति की बड़े भक्ति के साथ अब पूजा करना जैसे भगवान ने कहा शुरू किया। प्राप्य कृतः कृत्यवत, जैसे भगवान ने कहा था वैसे उनकी पूजा करने शुरू की। दूसरे श्लोक में श्री प्रभुपाद जी के अनुवाद को लिखा है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा ऐसा कहकर भगवान उस स्थान से अदृश्य हो गए। भगवान से ये परम मूल्यवान आशीर्वाद पाकर कि वो उसके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, आदित्य ने अपने को परम सफल माना और वो अत्यंत भक्तिपूर्वक अपने पति के साथ पास गई। ठीक है, अब 22 इसके बाद आपको पढ़ना है। सवई समाधि योगे न कश्यपस्तद अबुद्यत प्रवेष्टुमात्मनि हरे अंसम है अवतथे क्षण अवैथत ईक्षण। सवई समाधि योगे न, श्री श्री राजा राधिक रमन की, श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव शोत्र महाराणी सुदर्शन चक्र की जय, गौर निधाय की जय। सह या सह सुखदेव महाराज कहते कश्यप मुनि वही समाधि योगे न, जैसे वो समाधि योग में स्थित थे तो उन्होंने क्या देखा कश्यप ने, तद अबुद्यत। अबुद्यत का मतलब क्या होना चाहिए? बोध हो गया, समझ गए। क्या समझ गए? प्रवेशम आत्मने हरे राम, भगवान हरि का अंश मुझ में प्रवेश हुआ है। कश्यप ने जैसे वो समाधि में बैठे, समाधि योगे न, वैसे व्यास जी सब समाधि में लिखा है भक्ति योग समाहितम मनः। तो जब भगवान को पाना होता है तो केवल भक्ति से पाया जाता है। तो कश्यप जी जैसे ध्यान में बैठे तो उन्होंने देखा कि भगवान उन अपने अंश से उनके हृदय में प्रविष्ट हुए। आत्मनि हरि अपने अंदर भगवान को प्रवेश करते हुए देखा, अंशम अंश रूप से है अमित ईक्षण, ईक्षण का अर्थ तो सबको पता है ना, देखा अंत से अवित जिसके जिसकी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती है, इसका अर्थ ये है। तो अब इस श्लोक का अर्थ पढ़े, फिर श्लोक की आंख करें। ओ कृष्ण गोविंद, ये नारी हो गया, अब कहा है 22। ध्यान में स्थित होने के कारण अचूक दृष्टि वाले कश्यप जी ने, कश्यप मुनि ने ये देख, कश्यप मुनि ये देख सके के उनके भीतर भगवान का स्वांश प्रविष्ट कर रहा है। अब ये श्लोक पढ़ेंगे, इसके ऊपर तात्पर्य ठीक है। अब आइए श्लोक की आवृत्ति कीजिए। सो आदित्यां वीर्यं आधता तपसा चिरसंभृता समाहित मना राजन् दारुण्य अग्निं यथा अनिलः। आखिरी शब्द के ऊपर पहले ध्यान दीजिए, तीन शब्द लिखिए, दारुण अग्नि अनिल, ये है उदाहरण। पहले है सिद्धांत, फिर है उदाहरण। दारुण किसको कहते हैं? दारू जगन्नाथ जी को क्या कहते हैं? दारू ब्रह्म। तो लकड़ी की मूर्ति को दारू कहते हैं, तो दारुणी का मतलब लकड़ी, अग्नि का मतलब आग, और अनिल का मतलब हवा, हवा। जैसे हवा के तूफान कहीं लग जाए, लकड़ियां आपस में घिसे हैं तो आग लगती है। भाई वन में आग कैसे लगती है? लकड़ियों के आपस में घर्षण से। तो आग लकड़ी और हवा दोनों से अलग है कि नहीं? अग्नि न लकड़ी है न हवा है। तो अब आप इसको, तो आदित्य और कश्यप ऐसे हैं जैसे लकड़ी और हवा, और उनसे प्रकट क्या होगा? अग्नि, जो उनसे अलग है। ये बात समझ में आ रही? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो भगवान प्रकट होते हैं ये किसी आदमी जैसे हैं, ये उन दोनों से अलग है। जैसे लकड़ी से और हवा से, उनसे लगने वाली अग्नि अलग होती है, ऐसे कश्यप और आदित्य से उत्पन्न होने वाला बालक सामान्य मानव नहीं। ये सिद्धांत समझ में आया? बहुत आसान है कि नहीं? ये जो लिखा है तो बहुत स्पष्टीकरण हो गया इस सिद्धांत का। अब श्री प्रभुपाद जी का इस अनुवाद पढ़ते हैं, इसका शब्दार्थ भी पढ़ लेते हैं इसका। चलो शब्दार्थ का भी सुख ले लो। सा कश्यप ने आदित्यम, आदित्य के भीतर वीर्यम, वीर्य आधता रख दिया, तपस्या तपस्या द्वारा चिर संवृतम दीर्घ काल तक कई वर्षों से रुका हुआ समाहितम मनहा भगवान पर पूर्णतया समाधि लगाए राजन, हे राजा दारुणी काठ में अग्निम अग्नि यथा जिस तरह अनिल वायु, हे राजन जिस तरह वायु काठ के दो टुकड़ों के बीच घर्षण के तेज घर्षण को तेज करती है और अग्नि उत्पन्न कर देती है, उसी तरह भगवान ने पूर्णतया ध्यान मग्न कश्यप मुनि ने वीर्य को आदित्य के कुक्षी में स्थानांतरित कर दिया स्थानांतरित कर दिया। अब अगले श्लोक के साथ इसको जोड़ के देखो कि जो भगवान को अमोघ दृष्टि से कश्यप ने अपने अंश से आविष्ट होते देखा उसी भगवान को आदित्य में स्थानांतर किया। स्थानांतर का मतलब जो उसने भगवान का अंश प्रवेश करते हुए देखा था कश्यप, इसके आगे वाला श्लोक यही पढ़ा ना हमने, तो उसी भगवान को जो उनके अंदर आए उसको अपने मन से आदित्य के मन में स्थानांतर किया। अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य, जब वायु से वायु से क्षुब्ध होकर लकड़ी के दो खंड एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो जंगल में आग लगती है, किंतु वास्तव में ये अग्नि न तो काठी ही न होती है, काठी में होती है और न वायु में, ये सदा ही दोनों से भिन्न रहती है। इसी प्रकार यहाँ पर ये समझना चाहिए कि कश्यप मुनि तथा आदित्य का संयोग सामान्य मानव जैसा संभोग न था। संभोग के मानवीय सकलम से भगवान को कुछ भी लेना देना नहीं रहता। वे ऐसे संसारी संयोग से सर्वथा पृथक रहते हैं। ये तो पहला सिद्धांत है। भगवान आने के समय किसी को माता पिता के रूप में चुन भी लेते हैं तो ये नहीं है कि उनका जन्म सामान्य बच्चे की तरह होता है। ये रात में जो कथा में आए थे तो ध्यान से सुना होगा, तो वासुदेव के हृदय में भगवान अपने अंशों के साथ प्रवेश हुए और फिर वो भगवान वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतर हुए, और श्रील प्रभुपाद जी ने वहां तात्पर्य में लिखा है इसी को बोलते हैं दीक्षा। गुरु जी अपनी तपस्या से अपने हृदय में भगवान को प्रकट करते हैं और जब दीक्षा देते हैं तो वो अपने शिष्य के हृदय में स्थानांतर करते हैं। तो मानो के देवकी को वसुदेव ने दीक्षा दे दी, तो वहां ऐसे लिखा है। यहां ऐसे समझना चाहिए कि भगवान की आज्ञा के अनुसार कश्यप का जैसे ध्यान किया आदित्य ने, कश्यप के हृदय में भगवान ने प्रवेश किया और फिर भगवान कश्यप के हृदय से आदित्य के हृदय में स्थानांतर हुए। तो इन दोनों के बीच में सामान्य मानव की तरह बच्चा पैदा होता है, इससे भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। अब आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं समवाम सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों के प्रति संभाव रहता हूँ तो भी भक्तों की रक्षा करने तथा उत्पात मचाने वाले असुरों का वध करने के लिए भगवान ने आदित्य की कुक्षी में प्रवेश किया। अब ये समूहम सर्वभूतेषु, इसका मतलब मैं सबके साथ संभावना रखता हूं। अगर किसी ने सुना हो तो सातवें स्कंद में पहले प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षित महाराज कहते हैं ऐसे लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, असुरों को मरवा देते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। तो उस प्रश्न को लेकर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान सबसे संभाव है, फिर भी एक भगवान ने मर्यादा बना रखी है कि जो भक्त उनके होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, ये उनका भूषण है, ये उनका दूषण नहीं है, ये उनमें दोष नहीं है, वो भक्त वत्सल के नाम से जाने जाते हैं, भगवान का नाम भक्त वत्सल है, तो भक्तों की रक्षा करना ये उनका गुण है। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों के संहार के लिए ये उनका सिद्धांत है, भगवान परित्राणाय साधुनाम विनाशाय, ये तो उनका मुख्य सिद्धांत है जीवन का, भगवान का मिशन स्टेटमेंट है, ये उनका उद्देश्य है कि ये जो कार्य कर रहे, इस कार्य करने के लिए वो जब आते हैं तो आने को खंभे से भी आ सकते हैं, जैसे नरसिंह देव आए, आने को कहीं से भी आ सकते हैं, ना नासिका से निकल के आ गए ब्रह्मा जी की वारादेव वन पे, तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन कभी किसी अपने प्रेमी भक्त की इच्छा को पूरी करनी होती है तो उनके पुत्र के रूप में आते हैं। तो यहां वसुदेव और देवकी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा था, मेरे जैसा और कोई हो नहीं सकता, इसलिए मैं 3 बार आपका पुत्र बना। पहले आप देवकी प्रश्नी थी और ये सतुपा क्या सुपता था सुतपा था, मैं आपके घर में प्रश्नी गर्भा होकर आया, फिर अब आदि थी और कश्यप हुए, मैं आपके घर में वामन देव होकर आया, अब देवकी और वसुदेव आपकी जगह मैं कृष्ण बन के आ रहा हूं। तो ये आगे तो भगवान कहेंगे कि मैं ही आया था, दसवें स्कंद में तो भगवान ये स्पष्टीकरण कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि भगवान अपनी इच्छा से भक्तों की रक्षा और असुरों के संहार के, और यहां कौन से भक्त की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे, ये भी सीधा सा भागवत का श्लोक है कि जब इंद्र जैसे देवताओं के लोक में भी कोई विपत्ति आपत्ति आती है तो मैं उसकी रक्षा के लिए आता हूं। तो यहां इंद्र के लोक में ही समस्या हुई है ना, तो ये भी तो भगवान का अपना वचन है, उसका पालन कर रहे हैं। तो भगवान ऐसे आते हैं तो ये उनका उद्देश्य होता है। अतएव ये भगवान की दिव्य लीला है, ये भगवान की दिव्य लीला है, इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान इसी प्रकार में से आदित्य के पुत्र बने, जिस तरह स्त्री तथा पुरुष के संभोग से बालक उत्पन्न होता है। ये प्रभुपद सावधान कर रहे हैं कि भगवान के अवतार को ऐसे नहीं मानना चाहिए, ये भगवान की अपनी लीला है। फिर एक और आगे भगवान बात कहते हैं, आजकल के मत मतांतर के युग में यहां पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में बताना उपयुक्त होगा। इसका मतलब क्या है, आजकल लोग कहते हैं कि ये लाइफ कहां से आती है, लाइफ कहां से आती है, प्रभुपद सिद्धांत क्या स्थापित करने जा रहे हैं कि जीवन स्त्री और पुरुष के अंडे और वीर्य से नहीं होता, ओवम और स्पर्म से नहीं होता, जीवन से अलग है। सिद्धांत यह स्थापित करना है कि जीवन कहां से आता है। तो आधुनिक युग में जीवन की जो कहां से आता है यह बता रहा है, जीव की जीवनी शक्ति आत्मा मानव के वीरज तथा रज से भिन्न है, बद्ध आत्मा को पुरुष तथा स्त्री के प्रजनन कोशिकाओं में कुछ भी लेना देना नहीं रहता, वो अपने कर्म के अनुसार उचित पद प्राप्त करता है कर्मणा देव नेत्रेण। इस तरह जीवन मात्र रज वीर्य का प्रतिफल नहीं अपितु सारे भौतिक तत्वों से सर्वत्र हो स्वतंत्र होता है। ये तीसरे स्कंद भागवत में इसका आपने सुना होगा, जहाँ देव नेत्रणी शब्द आया है, जहाँ देवहूति माता गर्भ गीता पूछ रही है कि गर्भ में कैसे बालक आता है, तो वहां लिखा है जीव आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पुरुष के किसी एक रेत कण में प्रवेश करती है, सब में नहीं, नहीं तो रेत किस, वो जीव आत्मा इन दोनों से अलग है। पहला तो सिद्धांत ये है, अब वो दोबारा उदाहरण दिमाग में ले आई कि लकड़ी और हवा से अग्नि अलग है, ऐसे ही पुरुष और स्त्री के कीटाणु से जीवात्मा अलग है। कब आती है, किसके घर में आती है, उसके लिए शब्द देव नेत्रेण, अपने कर्मों के अनुसार जैसे भी भगवान के निर्धारित देव जिस आत्मा को जिस गर्भ में डालना चाहते हैं वहां जाती है, हमारे बस से नहीं आती, जिसको जहां डालना होता है वहां भेजते हैं, तो उन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। जीव को न तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न किसी तेज हथियार द्वारा काटा जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न ही हवा से सुखाया जा सकता है। अब ये प्रभुपाद जी आत्मा की गुण बता रहे हैं, आत्मा भौतिक है ही नहीं, तो ये तो रज और वीर्य तो भौतिक है ना, तो इससे क्या लेना देना आत्मा का, आत्मा तो भौतिक किसी भी चीज से उसका कोई सरोकार ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो अपने कर्मों के अनुसार कब कहां कहां जाना है वहां चली जाती है, उसके जाने के लिए ये एक साधन है। वो भौतिक तत्वों से पूर्ण स्वतंत्र होता है, किंतु किसी श्रेष्ठ व्यवस्था द्वारा वो इन तत्वों में धर दिया जाता है, किसी श्रेष्ठ व्यवस्था द्वारा इन तत्वों में धर दिया जाता है बद्ध जीवात्माओं को। श्रेष्ठ व्यवस्था क्या है, देव नेत्रेण, श्रेष्ठ व्यवस्था मतलब किसको कहां भेजना है ये निर्णय आप नहीं कर सकते, ये निर्णय कोई और कर सकता है, तो उसके द्वारा जहां भेजना होता है वहां भेजा जाता है। वो सदा ही भौतिक संपर्क से दूर रहता है, असंगो ही असंगो अयम पुरुष, ये वेद का वाक्य है, असंगो अयम पुरुष, ये जीवात्मा भौतिक चीजों से सदा असंग रहता है, ये उनकी परिभाषा है। किंतु भौतिक दशा प्राप्त होने के कारण उसे प्रकृति के गुणों का बंधन भोगना पड़ता है, है तो असंग, लेकिन एक बार प्रकृति के साथ मिल जाता है तो बंधन। अब ये श्लोक पढ़ लीजिए भगवद गीता का, ममई वंश जीव लोके, जितने भी जीव आत्मा है लोक में है वो सब मेरा अंश है। फिर क्या है श्लोक का दूसरा हिस्सा, जीव भूत सनातन है, इसमें जीव भी सनातन है भूत भी सनातन है। भूत क्या है, पंचभूत, वो भी मुझसे निकलते हैं, वो भी सनातन है, और जीव भी सनातन है। पहले जीव बोला, पहले दोनों नहीं बोला, ममई वंश जीव लोके, फिर बोला लोक में जब जीव आता है तो जीव भूत हो जाता है, इसका मतलब जो पांच भूतों का शरीर उसको प्राप्त होता है वो पांच भूत भी सनातन है, क्योंकि भगवान से निकलते हैं, हमेशा रहने वाले हैं। पुरुष प्रकृति द्वाओ, नहीं इससे पहले वाला श्लोक है, पुरुष और प्रकृति दोनों सनातन है, ये 13वें अध्याय का श्लोक है, पुरुष प्रकृति द्वाओ सनातन, ऐसे शब्द है कि वो दोनों सनातन है, इससे आगे वाला श्लोक किसी को ध्यान में आए तो अभी आ जाएगा। बीसवां श्लोक है, तीसरे अध्याय का देख लो, बीसवां मेरे ख्याल में। उभाव प्रकृति में पुरुषम चाहे वह विद्या अनादि उभाव, दोनों अनादि है। अनादि का मतलब सुना था, पुरुष प्रकृति में पुरुष चाहे वह विधि अनादि उभाव, दोनों अनादि है, दोनों का आद और अंत नहीं है। तो भूत का भी नहीं है और जीव का भी नहीं है, लेकिन भूत का गुण क्या है और जीव का गुण है, इनमें दोनों में अंतर है। तो आगे श्लोक कैसे जाता है, ममयंस जीवलोके जीव भूत सनातन। फिर मन शिष्टानी इंद्रियानी, ये कहां से आए, प्रकृति से। प्रकृति ने दिया शरीर जिसके अंदर है मन और इंद्रियां मुख्य, और भगवान ने दिया जीव आत्मा, वह भगवान का अनादि अंश है। अब झगड़ा क्या हो गया, अब खींचतानी चल रही है। आत्मा कहती है मंदिर में जाके भगवान का भजन करता हूं, शरीर कहता है नहीं घर बनाऊंगा, दुकान लूंगा, चलाऊंगा, बच्चे पैदा करूंगा। ये दोनों का झगड़ा चल रहा है, क्योंकि शरीर मिला वहां से है ना, प्रकृति से मिला है, वो तो प्रकृति के भोग में जाना चाहता है, और आत्मा भगवान का अंश है। इसको बोलते हैं कर्षति, कर्षति का मतलब खींचतानी, इसको हम कर्षति को बोलते हैं रसाकशी। रसाकशी होती थी स्कूल में, दो पार्टियां होती थी, खींचतानी करती थी, तो एक जीत थी इसमें जो भक्त है उसमें आत्मा वाला तरफ जीत जाता है, भक्त मंदिर की तरफ आते हैं, जो अभक्त है वह प्रकृति खींच जाती है, और प्रायः सब उधर चले जाते हैं या थोड़े आते हैं। ये रसाकशी चल रही है। तो यह शब्द क्या लिखा है, जीव असंग है, लेकिन जब वो शरीर में आ जाता है तो बध जाता है। किससे बध जाता है, प्रकृति के तीन गुणों से बध जाता है, और फिर खींचातानी चालू हो जाती है। तो प्रकृति के दो गुणों से बध जाता है, क्या बध जाता है, मन और इंद्रियों का शरीर बध जाता है। अब प्रभुपाद जी एक और श्लोक लिखते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्तो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणगुणसंगस्य सदस्योनि जन्मसु। कैसे जीव आत्मा कभी सद और कभी असद, कभी अच्छे और कभी देवता और कभी असुर, कैसे पैदा होता है, बोला कौन से गुण के प्रभाव में आता है उसी के अनुसार उसका जन्म होता है। जैसे हम कहते हैं सतोगुण का व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, सतोगुण की वृद्धि होती है, तो रजोगुण का क्षत्रिय के भाव में आ जाता है। तो ये गुणों के अनुसार किसी को कहाँ जाना है वो उसका कारण है। इस तरह जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है, करता हुआ जीवन यापन करता है, ये भौतिक प्रकृति की संगति के कारण होता है। इस तरह विभिन्न योनियों में उसे अच्छे बुरे से पाला पड़ता है। भगवद गीता 13:22। यद्यपि जीव भौतिक तत्वों से पृथक है किंतु वो भौतिक अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उसे भौतिक क्रियाकलापों के फल भोगना होता है। यहां तात्पर्य समाप्त होता है। तो आज के श्लोक से हमको क्या लेना चाहिए, यू मस्ट सफर द रिएक्शंस ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस तरीके से कश्यप और आदित्य के मिलने से भगवान जो कश्यप के हृदय में प्रवेश किया था वो आदित्य के हृदय में आ गए, और इसके बाद और भी स्पष्टीकरण होगा कि इसके बाद ब्रह्मा जी आके कहेंगे तो भगवान आपके घर में आया है। तो ये सब बातें ये स्थापित करती हैं कि भगवान का अवतार सामान्य जीव जैसे नहीं होता है, पहले तो ये बताया गया। उसके बाद दूसरा प्रभुपाद के तात्पर्य में मुख्य जो केंद्र बिंदु जिस बात के ऊपर प्रभुपाद जी बल दे रहे हैं वो ये है कि जीव भी भौतिक किसी रज और वीरज के कण से नहीं उत्पन्न होता। जीव आत्मा अपने कर्मों के अनुसार किसी पुरुष और स्त्री के द्वारा प्रकट होता है, लेकिन भौतिक किसी चीज से बना हुआ नहीं है। इसका अर्थ ये है, इसलिए प्रभुपाद सदा कहते थे कि जीवन कोई रसायन से नहीं बनाया जा सकता। फिर एक सूखा हुआ पेड़ कहीं देखा, बोला आपको मालूम है ना कि कौन सी रसायन जीवन में होती है, वो सारी इंजेक्शन में भर के इस पेड़ में लगाओ, इसको फिर हरा भरा करके दिखाओ। प्रभुपाद जी ऐसे उदाहरण देते कि सूखा हुआ पेड़ है, तुम्हें मालूम है कि इस पेड़ में क्या रसायन है, तुम सारा इसका एनालिसिस कर लो केमिकल, और सब एक जुए सुई में डाल के इस पेड़ में लगाओ और इसको हरा भरा करके दिखाओ। आदमी मर गया है, तुम्हें मालूम है कि ये शरीर किस चीजों को बना हुआ है, उसके अंदर कोई मसाला डालो उसको जीवित करके दिखाओ। क्योंकि जीव आत्मा हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान का अंश है, वो जिसमें प्रवेश करता है तभी वो चलता है। तो ये सिद्धांत दूसरा है कि जीव आत्मा, इसलिए ऐसे कभी कभी तो नहीं किसी को संतान होता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, कि जीव आत्मा को आना ही नहीं होता है तो क्या करोगे, उन दोनों में है ही नहीं ना। जैसे कश्यप में भगवान प्रवेश किया, ऐसे जीव आत्मा जीव में प्रवेश करता है, क्योंकि कश्यप तप से पवित्र हुआ था तो वह भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी हो गया था। सामान्य व्यक्ति जीव आत्मा को, वो भी कैसा, कोई भला आदमी होता है तो भला जीव उसके घर में आता है, साधु संत आता है, और कोई पापी होता है तो उसके घर में पापी जीव आता है। तो जीव आत्मा अपने कर्मों के अनुसार हर घर में जैसे आती है वो अलग हो गया ना। अब देखिए कहीं तो साधु महात्मा पैदा होते हैं किसी के घर में, और किसी के घर में आतंकवादी पैदा होते हैं, ये आपके बस में तो नहीं है ना। तो कैसे वहां आते हैं अपने कर्मों के द्वारा, कौन भेजता है, उत्तम व्यवस्था है, किसको कहां भेजना है ये उत्तम व्यवस्था है। कभी किसी ने प्रभुपाद से पूछा था, अब क्या करें, ऐसी जगह हमको प्रचार करने के लिए जाना पड़ रहा है जहां इसके मुंह लोग रहते हैं, 6 महीना बर्फबारी होती है तो वहां तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, केवल पशु है। बोला उनका कर्म ऐसा है कि वहां जन्म मिला, उसका कर्म ऐसा था तब वहां जन्म मिला ना, जहां उनको वही कुछ खाना है तो उनके कर्म के कारण उधर मिला ना। भाग्यशाली, इसलिए महाप्रभु ने भाग्यशाली है, भारतवर्ष में जन्म मिला है, बहुत बड़े भाग्यशाली हो, भारतवर्ष में जन्म मिला है, भारत भूमि पर जन्म हुआ है तो जन्म सार्थक कर लो, ये तो सौभाग्य से मिला है, कहीं इसके मुंह मिला है 6 महीने बर्फ में ऐसे पड़े होते कुछ नहीं कर सकते, केवल अंडा बॉयल करके खाते बस, और कुछ नहीं करना है। कितना बड़ा सौभाग्य है, तो इसका कोई सदुपयोग करना चाहिए ना, ये हमारे बस में तो नहीं है। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? नहीं, वो तो कंस तो काल में भी राक्षस था, वो आतंकवादी था, उसकी आत्मा को उग्रसेन में घर में पैदा कर दिया, ऐसा लिखा है ना। तो कंस काल में भी असुर था, जो उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के उदर में स्वयं जाके उग्रसेन का रूप धारण करके, और वो भगवान ने जीवात्मा वहां स्थापित किया। हाँ, इसको तो, ये तो 7वें स्कंद का उत्तर है। 7वें स्कंद में हमने आपसे प्रश्न केवल बताया, परीक्षित महाराज ने कहा कि भगवान पक्षपात करते हैं, देखो वृत्तासुर को मारा दिया 6वें स्कंद में और इंद्र की रक्षा कर दी, तो 7वें स्कंद में भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रहलाद तो असुर हिरण्यकश्यप का बेटा था ना, उसके लिए भगवान नरसिंह देव अवतार लेके आए, तो कैसे कहते हो पक्षपात करते हैं। नहीं नहीं, मैं का बात कह रहा हूं, पहले ये सिद्धांत समझो कि वहां ये आया क्यों है, स्कंद कहां पक्षपात हुआ, हिरण्यकश्यप के बेटे असुर के बड़े बेटे के लिए भगवान अवतार लेकर आए कि नहीं आए नरसिंह देव, तो कैसे कहते हो पक्षपात करते। अब आपके आपका क्या प्रश्न है? अरे आतंकवादी हिरण्यकश्यप नहीं है, हिरण्यकश्यप वैकुंठ का जय विजय विजय वो तो भगवान की लीला के लिए आया है, और ये पहले ही कश्यप को भगवान ने, कश्यप ने आदित्य को ये तो वरदान दे दिया था कि क्यों ने तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र तो अभी असुरी प्रकृति के होंगे, लेकिन तेरा पोता बहुत बड़ा महाभागवत होगा, किसी भक्त के नाम लेने में पहले उसका नाम याद आएगा। ये कश्यप ने पहले आशीर्वाद दिया था आदित्य को कि तुम्हारी, तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया है, इसलिए तुम्हारे को ये प्रसाद तुम्हारे पोते के रूप में मिले हैं। और इससे ये सिद्धांत, इससे आप इसको ऐसे समझो कि उत्तम व्यवस्था से किस जीवात्मा को कहां भेजना है। अगर असुर के घर में भी भक्त भेजना है तो भगवान भेज सकता है, जैसे बलि महाराज और प्रहलाद दोनों महाजन हैं, दोनों 12 महाजनों में महाजन हैं और दोनों असुर के घर में पैदा हुए, तो भगवान की व्यवस्था कैसी है, कहां किसको भेजता है कुछ मालूम नहीं। और एक विषय लाते कहां से, सारे नहीं होते हैं, जिसमें जीवात्मा आना होता है, जिस आज जीवात्मा को इतना दुर्भाग्य है कि किसी माँ का गोद लिखा हुआ नहीं है, किसी बाप का गोद लिखा हुआ नहीं है, इतना पापी है तो किसी ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है बेचारे को, क्या करें, ये भी देव नेत्र है ना भाई, उसको किसी माँ का दूध पीना लिखा ही नहीं है, वो तो किसी, इसलिए भाई कोई, मैंने आपको कहा जब भगवान कहीं से आ सकते हैं तो जीवात्मा को, अब जैसे कह कचरे के अंदर कैसे जीव पैदा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, हम मानव को छोड़ो बाकी जीव कहीं और हो सकते हैं, वो भी जीवात्मा है ना, तो ऐसी कोई जीवात्मा वहां से निकाल के कोई दूसरे के मशीन में डाल दिया जाए तो दूसरा उसको शरीर मिल जाए, इसमें क्या फर्क पड़ता, हो सकता है, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। नहीं नहीं वो अपने को महान मानते हैं लेकिन अपने को बचा नहीं सकते हैं, इसलिए परेशान है। अगर इतने महान होते हैं तो कम से कम पहले अपनी आत्मा को बचा दो, उसको दूसरे के की परेशान कर रहे हो। नहीं, अगर साइंटिस्ट ने, विज्ञान बहुत जरूरी है, जो भगवान को के नियमों का पालन करे उसका उल्लंघन करेगा तो काम ही उल्टा हो जाएगा। करते हैं, ये हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो रही है, ये तो आज की क्या बात है, ये तो व्यास देव ने गंधारी के गिरे हुए गर्भ को 100 मटकों में 100 टेस्ट ट्यूब में डाला और 100 कौरव पैदा हुए, ये सारे टेस्ट ट्यूब बेबी कौरव वंश के हैं। टेस्ट ट्यूब का पहले प्रयोग व्यासदेव ने कर दिया है, वो मटके वाला ट्यूब था, मटका ट्यूब, 1 के 100 ये क्लोन भी हो गए, और क्या, 1 के 100 बना दिए, जो पहला वो दुर्योधन, बाकी सब बदमाश और भी ऐसे के ऐसे, तो बनाने तो बदमाश क्या करेंगे, और वैसे क्यों बनाए जा रहे हैं कि भ्रूण में हत्या कर गई, वो जीव जाए कहां, फिर बेचारों के लिए वही चीज बच गई है बाकी, और ये असुरी है इसलिए वहां जा रहे हैं, यह असुरी प्रवृत्ति है तब वहां जा रहे हैं, वैसे वहां ऐसा जाना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।